أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. خود کو بدلنے کا ایک اور خوبصورت موقع، اپنی اصلاح کا اور موقع، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں لے جانے کا ایک اور موقع. ہر دن ہی سوچ کے ساتھ بیٹھا کریں کہ الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی رہنمائی میں نکھارنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور میں اتنا نکھر جائیں کہ قیامت کے دن ہم خود کو دیکھ کر بھی پہچان نہ سکیں. جیسے کبھی کبھی وہ ایک عام سی لڑکی جب سجتی سنورتی ہے، دلہن بنتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں آج تو پہچان ہی نہیں جا رہی. مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کو قیامت کے دن بہت ہی حسین و جمیل بنائے. ابھی بھی آپ بہت پیارے ہیں، لیکن آپ مزید پیارے ہوں. تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں کس لیے؟ اپنا میک اپ کرنے کے لیے، اپنی آرائش کے لیے. ٹھیک ہے، شروع کرتی ہوں. اور مجھے امید ہے گھر والے بھی صاف ستھرے ہو کے بیٹھتے ہیں کنگھی کر کے. آپ سب کنگھی کرتے ہیں ویسے؟ ویسے بھی اسکارف کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کنگھی نہیں کرنی پڑتی. ایک جگہ کسی ایک سسٹر نے یہ بات کہی تو میں کانپ کے رہ گئی، بلیو می. ایسی جوش میں تھی جب سے اسکارف لیا ہے، یہ فائدے ہوئے، یہ ہوئے، بڑی عزت ملتی ہے، اور کہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کنگھی نہیں کرنی پڑتی. پھر تو میرا دل کیا یہ میرے سے ذرا سا فاصلے پہ کھڑی ہوں، پتہ نہیں اندر کے کیا حالات ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اندر باہر سے صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اللہ کا دین سب سے زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو خوبصورت رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. آج کا ہمارا پارا بھی بڑا ایکسائٹنگ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023، DQ 2023. اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارا نمبر 7، و اذا سمیعوا، اور جب وہ سنتے ہیں. تو آج کچھ سننے کی باتیں ہیں. آپ اور میں بھی ہر روز قرآن سنتے ہیں. یہ قرآن ہمارے دلوں پہ کیا اثر رکھتا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ اس کی بالکل شروع کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن سنتے وقت ایک انسان کا جو رویہ ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اصل ہے. تھوڑی سی بات اس کے نام پہ کر دوں. آپ دیکھیے کہ قرآن سننے اور سنانے والے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا قرآن دل پہ اثر نہیں کرتا. آج بھی آپ دیکھیے، مجھے کسی نے کہا کہ حرم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تھکن بھی، راتوں کو جاگنا، نیند آ رہی ہے، اور اتنے میں امام سدیس کی آواز آتی ہے تو سب تھکن بھاگ جاتی ہے، ہم فریش فیل ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے بھی واقعی کبھی وہاں کا سفر کیا ہے تو آپ بھی محسوس کریں گے، ہر نماز اسپیشلی مغرب عشاء اور فجر سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ امام سدیس بات کرے. اور بھی بہت سے امام ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک تاثیر دی ہے نا. بس قرآن کی زبان، قرآن کی بات میں تاثیر یہ کیسے آتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ جو محفلیں ہمیں آپ کو دی ہیں، اسی طرح کی محفلیں، اسی طرح کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا لقب آتا ہے، ان کی بیٹی کہتی ہیں کان ابا بکر رجل بکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رونے والے شخص تھے، لا تملک ولا عینی، ان کو اختیار ہی نہیں رہتا تھا کہاں، الا عینی اپنی آنکھوں پہ، کب، جب وہ قرآن پڑھتے اور سنتے تھے. جب مکی دور میں ٹارچرز تھے اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو اس وقت بہت سارے لوگ پریشان تھے اس بات پہ کہ ہم کیا کریں. تو ابو بکر صدیق، جن کی بڑی شان تھی اس ماحول میں، اور کریم کہتے تھے لوگ ان کو، بہت جنرس تھے، سوشل ورک کرنے والے تھے اپنی زبان میں آپ اور میں کہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ جاتا ہوں، آپ نے مکہ سے ہجرت کرنا چاہی. یہ خبر پھیل گئی کہ اتنا اچھا شخص تمہاری وجہ سے جا رہا ہے. اب یہ ان کے لیے قسم کی بہت آر تھی، بہت ہی برا لگا، کہنے لگے شرم نہیں آتی، تمہارے کرتوتوں اور تمہاری نا قدریوں کی وجہ سے اتنا اچھا انسان تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. واپس لے آئے. ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر آپ میری پناہ میں چلی، ابن دغنا نام آتا ہے ان کا. کہنے لگے مکہ میں لا کر ان کو کھڑے کیا اور آواز لگا دی اس دور کے رواج کے مطابق کہ آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں. یہ ایسے جیسے آج کے دور میں انشورنس کمپنیاں نہیں ہوتی، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو یہ کر دیں گے اور وہ کریں گے، اس طرح کی کوئی کیفیت تھی. اپنے جاہلی اور جو قبیلہ کا سسٹم تھا، قبائلی نظام، اس پہ پھر وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے جس کو کوئی کہتا، یعنی پروٹیکشن لے لی انہوں نے. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہا جائے، ہماری ایک شرط ہے. और शर्त यह कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हरम में आके कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज़ नहीं पढ़ सकते। बस ठीक है, इन्होंने कहा चले ठीक है। अबू बकर ने कहा ठीक है, मुझे क्या, मैं अपने घर में पढ़ लूँगा, मोमिन का तो घर ही उसके लिए बहुत प्यारी जगह होती है। तो बिलआख़िर अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के साथ एक जो घर का कोना था उसको मस्जिद बना के, या आप कह लें प्रेइंग रूम बनाया। अब वहाँ दिन रात उनकी कुरान की आवाज़ें आती। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि उनकी गली मोहल्ले के जो लोग थे वो आपके पास आकर कहने लगे कि अबू बकर आप जिधर मर्जी जाकर कुरान पढ़ें लेकिन आप घर में नहीं पढ़ सकते। क्यों? कहने लगे कि आपके कुरान की आवाज़ से हमारी औरतें और हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और वो मुसलमान हो रहे हैं। ये है आज का पारा। आज इंशाल्लाह हम अजमत कुरान के सिलसिले में, अजमत सहाबा के सिलसिले में जो टॉपिक लेंगे इस पारे का, वो क्या है, मारफत हक और हक गोई। जब एक इंसान के दिल में हक उतर आता है, और हक क्या है, अल हक, अल्लाह की ज़ात। आप अगर इसको वो तहज्जुद की दुआओं में से एक दुआ देखें ना, अल्लाहुम्मा अंतल हक व कौलुकल हक व लिकाउका हक वल जन्नतु हक, सबको याद है दुआ? ये दुआ तहज्जुद के वक्त की दुआओं में से है। आप खोल के हिस्नुल मुस्लिम खोल लीजिए, बिल्कुल शुरू की दुआओं में से एक दुआ है कि अल्लाह तू हक है, तेरा सब कुछ हक है। बस ये अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के फ़ैसले, अल्लाह की किताब, ये हक जब दिल में आ जाता है, जब आपको ये मार्फत हो जाती है, वैन यू विल रिकग्नाइज द ट्रुथ, उसके बाद दो तरह के लोग सामने आते हैं। कुछ होते हैं वो कहते हैं हाँ बात तो ठीक है लेकिन इज़हार नहीं करना चाहते, लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग माइंड करेंगे। आप इसको इतने से लेके ना, ये मेरी उंगली से इतना बड़ा कर लें, एलेबोरेट करें, जैसे वो जूम इन जूम आउट। जिस बंदे के दिल पे हक आ जाता है ना, ज़ाहिर अल्लाह की ज़ात की पहचान होती है। यानी पहला इसका स्टेप क्या होता है, अल्लाह कौन है, अल असमाउल हुस्ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी के 25 नेम एंड एट्रीब्यूट्स। फिर आप और खोलते हैं तो आपको सूरत हशर की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला के 10-11 नाम जो है वो मिल जाते हैं। फिर आप असमाउल हुस्ना खोलते हैं, आप उसमें तरतीब से शुरू होते हैं, अल्लाह रहमान रहीम अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन, पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। फिर आप सूरत कहफ के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं कि तुम्हारे रब की बातें पूरी नहीं होंगी। फिर आप सूरत लुकमान पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि जाओ सारी दुनिया के दरख्तों को लकड़ी बनाकर कलम बनाओ, समंदरों के पानी को तुम इंक बना लो और जाओ लिखो, नहीं लिख सकोगे। तो सबसे पहले बंदे के दिल पे जो चीज़ आ जाती है ना, वो अल्लाह की ज़ात है। हक की पहली सूरत अल्लाह है, अल्लाह सुबहान तआला हक है और मैंने उसको पहचान लिया। आज दुनिया में शिर्क है, नाकदरी है, निफाक है, फिस्क है, ए बी सी डी करके हर चीज़ को गिनवा देती हूँ, इसकी वजह एक ही है, मारफत हक नहीं है। आप जिस बंदे को पहचान जाते हैं, क्या आप उसके बारे में सीरियस नहीं हो जाते? क्या आप एक बंदे को जब देखते हैं कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, तो क्या आपके उसके बारे में अच्छी राय नहीं हो जाती? दुनियावी तौर पे आप किसी से मरूब हैं, आपका कोई भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, आपके हस्बैंड है वो जॉब करते हैं, उनकी जॉब पे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, सदर हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं। यानी इसको मैं सिर्फ आपको फील कराना चाहती हूँ कि दुनियावी तौर पे भी जब हम लोगों को मुख्तलिफ तरीके से पहचान जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम उनसे मरूब होते हैं। किसी की दौलत से, किसी के हुस्न से, किसी के माल से, किसी के आला अखलाक से, किसी की रिश्तेदारी से, यानी जिस बंदे का हमारे दिल में मुकाम बनने लग जाता है ना, हमारे लिए बड़ा हो जाता है। और इसके बाद जब अल्लाह की ज़ात का यकीन आने लगता है, तो फिर बंदे में शुक्र पैदा होता है। फिर आप कहते हैं अल्लाह मैं तेरी नाकदरी नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे पता है तू सबसे बड़ा है, तू दाता है, तू रसाक है, तू अल गफ़ार है, मैं किसी को अपने गुनाह क्यों बताऊँ? और इस तरह से होते होते वो बंदा अल्लाह ताला से जुड़ने लगता है। और एक वक्त आता है कि फिर वही बात है कि तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। फिर तन्हाइयों में, शहनाइयों में, खुशियों में, गमियों में अल्लाह की ज़ात इंसान को बिल्कुल अपने सामने दिखती है। इसी का एक दूसरा नाम तकवा भी है, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह मेरे पास है। और फिर इंसान को अल्लाह ताला की ज़रूरत महसूस होने लगती है। आप देखें ना, एक बीज है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो बीज फूट रहा है, थोड़ा फट रहा है, फिर खुल रहा है, फिर खुल रहा है, फिर उसमें एक कोंपल होगी, फिर उसमें से और स्टैम्प बनता गया। जब अल्लाह को पहचान लेता है बंदा, ना गुनाह करेगा क्योंकि शर्म आएगी। कोई एक बड़ा बंदा आपके सर पे खड़ा हो, आप सीधे हो जाते हैं, अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं, बार बार अपनी टाई लोग ठीक कर रहे होते हैं, कहीं बैठे हो ऐसे बैठे होते हैं जैसे रुकू में बैठना होता है, क्योंकि मरूबियत का एहसास होता है। फिर आप उसके सामने कोई नाफरमानी नहीं करते, लोग छींकते नहीं, लोग स्नीज नहीं करते, लोग ज़्यादा एक्शंस नहीं करते कि देखने वाला क्या कहेगा, मैं तो बड़े बुरा लगूंगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको अल्लाह सुबहाना ताला की मार्फत हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, अपने रब को पहचान जाते हैं, फिर नाफरमानी का तसव्वुर नहीं। सहाबाए कराम का जो मेन पॉइंट, फोकल पॉइंट, जिससे वो वीर, जिससे सहाबा सहाबी बने थे, जिससे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का टॉपिक शुरू हुआ था ना, वो जिसको आप कह सकते हैं कि सहाबा का पहला और अनोखा कारनामा मार्फत हक थी। उन्होंने रब को बगैर देखे पहचान लिया। फिर दूसरी मार्फत जो एक इंसान को हक के तौर पे होती है ना, वो रसूल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिस दिन आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हो जाती है ना, इतना प्यारा लीडर, इतना जांग असर, फला अल्लाह का बाख नफ्स अला आसारिहिम की बातें आप पढ़ते हैं, जब आप नबी को पहचान जाते हैं। सहाबा कराम ने उस दौर में नबी को नबी पहचाना जब वो नबी नहीं थे। खदीजा उस वक्त अपने शौहर के लिए हिरा में खाना लेकर जाती थी जब वो नबी नहीं थे। हज़रत खदीजा का इतनी ऊंची पहाड़ पे चढ़ना गारे हिरा में, पता नहीं कैसे खाने पानी लेके जाती होंगी, ये तो जिस दिन उनके बारे में बात होगी तो उस दिन सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनको उस दिन उस शख्स जिसको शौहर कहते हैं, बस आपके मेरे भी शौहर हैं, हम उनके लिए खाना बना के ड्राइवर के हाथ ही भेज दें तो बड़ी बात है। हज़रत खदीजा कैसे बुढ़ापे में ऊपर चढ़ के गारे हिरा में जाती हूँ कि जहाँ आज भी बहुत सारे लोग बावजूद मोहब्बत के नहीं जा पाते, चले नहीं नहीं गर्मी बड़ी है बस देख लिया। और उनकी उम्र मुबारक उस वक़्त 55 साल, कैसे चढ़ती थी, क्योंकि उनको पता था कि ऊपर मेरे शौहर हैं। और वो बाद में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह बना तो पहली गवाही इस इस्लाम की अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की एक औरत ने दी, और वो खदीजा थी। मार्फते हक का दूसरा लेवल क्या हुआ, उनको रसूल का मुकाम समझ आ गया। जिस दिन आप और मैं, मुझे सब की नहीं फिक्र, आपको भी सिर्फ अपनी फिक्र होनी चाहिए। मैं अपने आप से इस मौजू को सुनते वक्त आज पूरे पारे के बल्कि शुरू में सारी बात आ रही है क्योंकि आयात ही शुरू में है। जिस दिन आपको अल्लाह का मुकाम समझ आ जाता है, सब छोटे, अल्लाह अकबर इन्नी असगर, बिरादरी असगर, खानदान असगर, दोस्त असगर, रिश्तेदारियां असगर, सब छोटे छोटे, बस ये पुतले हैं छोटे छोटे, वो डमी डमी डमी, वो हैंगमैन नहीं होते, हैंगमैन्स हैं, ये पुतली तमाशा है। फिर आप लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करते, फिर आप शौहर की खुशी के लिए अल्लाह को नाखुश नहीं करते, फिर आप एक छोटे से बच्चे को राज़ी करने के लिए अपने सारे दीन को दाव पे नहीं लगा लेते। जहाँ ज़िंदगी में अलहुब्बु फिल्ला वलबुग्ज़ु फिल्ला के अंदर इम्बैलेंस है ना, अलाइनमेंट लूज़ है। आप देखते गाड़ी में सब ठीक होता है, कहते नहीं ज़रा इसके व्हील्स चेक करा लें, ये ऐसे हिल रही है। वो कहते अच्छा इस व्हील में इसकी गेज ये है, इसकी ये है, इधर हवा कम है, ये वो जाकर सारे चारों को ठीक कर देते हैं, गाड़ी भागने लगती है। हमारी गेज ख़राब है, आज हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट लूज़ है, कभी एक टायर को इतना फुला देते हैं कि बस्ट ही हो जाए। कहते हैं शोहर मजाजी खुदा है, कोई मजाजी खुदा नहीं होता, ये तो शिर्क है। कभी कहते हैं ख़ानदान को तो राज़ी रखना है, कभी कहते ये तो जी ये मेरे मियाँ साहब के बॉस हैं, अपनी बेगमात को साथ ले जा जा कर लोग साइन करवाते हैं कि ज़रा इसका हुसन भी देख लो और इस प्रोजेक्ट पे साइन भी कर दीजिए, ये नहीं होता। सहाबा कराम को अल्लाह ऐसे दिखता था जैसे हमें जन्नत में जाके दिखेगा, वजूह हुई यौमैज़िन नादिरा इला रब्बिहा नासिरा। तो जब अल्लाह और उसके रसूल की आपको मार्फत होती है ना, तो फिर आपके अंदर एक अजीब बात आती है, फिर आपको इस्लाम की कदर आएगी। देखिए अल्लाह और रसूल तो मेन दो चीज़ें होंगी ना, अब जो प्यारा होता है ना उसके प्यारे भी प्यारे होते हैं, उसकी बातें भी अच्छी लगती हैं, उसकी रोक टोक भी अच्छी लगती है। फिर मार्फत का तीसरा दर्जा है, आपको इस्लाम की मार्फत मिलती है। आज सुबह रहुल बयान में एक मिसाल दी है शरीयत की, जाके सुनिएगा उसके पारा नंबर 5 में। शरीयत को बाज़ लोग बोझ समझते हैं, बाज़ उसको अपनी सिक्योरिटी समझते हैं। तो फिर जब ये सारे हक दिल में आते हैं ना, तो उसका अगला दर्जा फिर क्या होता है, फिर हक गोई होती है, फिर बंदा चुप नहीं रह सकता। अब देखिए एक छोटा सा बीज उस मिट्टी को जिसको नरम करने के लिए हल चलाए, प्लॉ किया, आज बड़े बड़े ट्रैक्टरों के पीछे लोहे के डंडे लगाकर ज़मीन को प्लॉ करते हैं फिर बीज डालते हैं, सख्त होती है ना ज़मीन बहुत सी, उसी ज़मीन के अंदर जूं ही बीज डालते हैं और पानी डालते हैं वो फिर सख्त हो जाती है। कुछ दिन के अमल के बाद वो बीज सर उठाता है, वो मट्टी जिसको अपने फावड़ों से फाड़ा, उस बीज में क्या पोटेंशियल है कि उसमें से खुद ब खुद निकल आती, कभी देखा है ये मंजर। छोटी सी कोंपल जब मट्टी में से निकलती, किसान की खुशी की इंतहा नहीं होती। अगर आपने कभी गार्डनिंग की हो, अपने घर के बाहर कोई फल फूल लगाए हों, तो आप इसको समझेंगे। ये पोटेंशियल क्या है कि इस बीज में इजहार है, बिल्कुल लिखे मार्फते हक का अगला दर्जा हक गोई होता है। फिर बंदा चुप नहीं रह सकता, फिर बंदा ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा मुश्किल है, फिर वो सारी हक की बातें, जन्नतों का हक, फिर आप जन्नत को पीछे नहीं डाल सकते। अब हर वो काम करेंगे जो जन्नत में ले जाने वाला, नारू का हक, अल्लाह तेरी जहन्नम हक है। फिर अब ये नहीं कहते हो छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं होता, ऐसी बातें हैं, बातें नहीं रहती। कौलू का हक, लिकाओ का हक, फिर ये नहीं कि जब मिलना है अल्लाह से देखेंगे मिलेंगे, होते होते वो एक पूरा मोमिन, ऐसा मोमिन बन चुका होता है जो ईमान के सारे फल के ऊपर होता है। इस बारे में हम बिल्कुल इब्तदाई आयात में हबशा के एक बादशाह और उसकी तरफ से जो ग्रोह आया था उसकी बातों को पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हम इस मौजू को समझेंगे इंशाल्लाह कि जब हक की मार्फत हो जाती है तो बंदा गूंगा नहीं रह सकता। लिख के रखिए, हक वाला गूंगा नहीं होता, या कोई गूंगा हक वाला नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह ने ज़ुबान दी होती है, हम जैसों को कुछ की ज़ुबान नहीं होती, और कुछ की होती और नहीं रहती। कल किसी ने मैसेज किया कि कोई सिस्टर बीमार है और कैंसर है, और डॉक्टर जब उसकी ज़ुबान काटने वाले हैं, दुआ करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे दे, बग़ैर किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अल्लाह उनको ऐसा ठीक कर दे कि वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाली बन जाए। वमन अहसन क़ौल मिम्मन दअ इला अल्लाह, ये ज़ुबान जो सारा दिन चलती है किसके लिए बुलाती है, ये अपने आपसे पूछे। तो जब गूंगे के पास बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं रहते ना, तो वो रोता है। आप कभी किसी गूंगे को कुरान पढ़ता हुआ सुने, कभी देखे आपने? मुझे इत्तफाक हुआ, लोग तो बोल के फीडबैक देते हैं ना, तो आप कैसे इजहार है ना, जिसके पास ज़ुबान नहीं वो कैसे इजहार करता है, वो आंसुओं से करता है। कुरान पढ़ते वक्त आपका मेरा भी यही हाल होता है, मेरा दिल कर रहा है कि हम इब्तदाई आयात पढ़ें, फिर मैं आपको आज के बारे की शख्सियत जो इंशाल्लाह हम देखेंगे, अगर मैंने लफ्ज़ सहाबा ना ना सोचा होता तो आज की शख्सियत निजाशी था, असहमा, हबशा का बादशाह। निजाशी हर दौर के बादशाह को कहते थे, लेकिन जिसकी बात इन आयात और इनके आगे पीछे आएगी आज, उसका नाम असहमा था। इंशाल्लाह कहानियाँ आएंगी, हम इन दोनों पे बात करेंगे। और सूरत माईदा की आयत नंबर 83 से ये पारा शुरू हो रहा है और 120 तक हम इसी पे रहेंगे। आइए देखते हैं ज़रा इसमें हमारे लिए क्या है। मैं इंशाल्लाह आयात को पढ़ने के बाद इन दोनों पे इकट्ठे बात करूँगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये है मार्फत हक। مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. पहला रुकू है आयत 83 से 86 है, टॉपिक है एतराफ़ हक, और इसको आप मार्फत हक भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आइए देखते हैं। और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं। आप और मैं भी इस वक्त यही कलाम सुन रहे हैं। अपनी दिल की कैफियत चेक किया करें, कुरान की तिलावत, कुरान का दौर, तरावी में, तहज्जुद में, दौरे कुरान में, कुरान की आयतों को सुनकर मेरे दिल की क्या कैफियत है? क्या कभी मैं अबू बकर की तरह रोई? क्या मैं रजुलुम बक्का हूँ? क्या मुझे कुरान सुन के रोना आता? हम तो आज बड़ा रोते हैं, फिल्में देख के, गाने सुन के, सैड सॉन्ग सुन के, कोई बड़ा इमोशनल सा ड्रामा देख कर, या हम रोते हैं अपनी ख्वाहिशों के ना पूरा होने पर, तमन्नाओं के टूटने पर। अल्लाह कहते हैं हक वाले कुरान सुन के रोते हैं, कैसे? इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं, और हमारे पास कौन सा उजर है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हम पर पहुंचा है इस पर ईमान ना लाएं? सवाल तो कीजिए खुद से, क्या आपके मेरे पास भी अभी कोई उजर बाकी? अल्लाह ने सारी हुज्जतें पूरी नहीं कर दी? अल्लाह ने आपके मेरे सुनने सुनाने का अहतमाम नहीं कर दिया? अल्लाह ने आपके मेरे लिए रास्ते आसान नहीं कर दिए? तो एक सच्चा मोमिन कहता है, क्या मेरे पास तो देर इज़ नो ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे तो हक दिलवा दिया। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रिफाकत में दाखिल कर देगा, इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कॉल की वजह से, इस लफ्ज़ कॉल को भी हाईलाइट करिए, अभी इस पर बात होगी, इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। और इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाते रहे, वो लोग दोजख वाले हैं। ये आयात निजाशी और इसके साथियों के बारे में नाजिल हुई थी। इससे पहले हज़रत जाफ़र तैयार हबशा में जाकर अल्लाह के नबी सल्लम का पैगाम दे चुके थे, और आपका पुरसोज अंदाज़े बयान देखकर लोगों के दिलों की दुनिया बदल चुकी थी। और ये आयात आपको मुझे क्या बताती हैं कि हक़ की पहचान दिल के रास्ते से होती है और आंखों से इसका इजहार होता है। लिख लें ये बात। प्याज काटें, प्याज की कुराहट आपकी आंखों में जाती है ना तो आंसू गिरते हैं ना, बस उसको लिख लें। मिर्चें खाते हैं ना तो ज़ुबान जलती है, अंदर चली जाएं तो मैदा जलता है, अंतड़ियाँ जलती हैं। करेले खा लें तो घबराहट होती है, ठंडी चीज़ खा लें तो सर्दी लगती है। बिल्कुल इसी तरह हक की पहचान जब दिल पे होती है तो आंखें उसका इजहार करती हैं, आंसू निकलते हैं। अगर इस पूरी आयत और दोनों आयत को देखिए तो इसमें नसरानियों के कुछ औसाफ़ हैं। हबशा से एक गिरोह आया था नबी सल्लम के पास दीन सीखने के लिए, और ये वाक़या उस वाक़े के बाद हुआ जो भी हम हज़रत जाफ़र के नाते से पढ़ेंगे। हज़रत जाफ़र हबशा में बीज डाल आए थे। जब मक्का वालों ने मुसलमानों को सताना शुरू किया तो उसके बाद मुसलमानों का एक अच्छा खासा गिरोह हबशा हिजरत कर गया, क्योंकि आज सुबह ही पढ़ के आए हम, हिजरत की बहुत बात है पाँचवें पारे में, कि जब बुरे माहौल में रहते ही हो तो फिर तुम तो मजबूरी बनोगे दिन ब दिन। और जिस बंदे को अल्लाह सुबहान तआला ने मौका दे दिया किसी जगह को छोड़ने का, किसी गलत माहौल को छोड़ने का, और वो छोड़ता नहीं है, उसकी मौत बड़ी सख्त होगी। ये सारा पाँचवें पारे का खुलासा। अब हुआ क्या कि लोग हबशा हिजरत करके चले जाते हैं। वहाँ का बादशाह था, उसका नाम था निजाशी, असहमा उसको कहते हैं। निजाशी ऐसी जैसे कैसर व किसरा, रोम के बादशाहों को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाहों को उस दौर में किसरा कहते थे, और आज जैसे पाकिस्तान या दुनिया में वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में ये जो चीज़ें ना ये सब थी। तो बहरहाल मुसलमान वहाँ चले गए कि यहाँ से वहाँ चलते हैं। ये हिजरत की एक दलील थी कि जिस माहौल में एक इंसान का दीन महफूज ना हो उसमें बैठे नहीं रहना चाहिए, वरना औलादें छिन जाती हैं और फिर इंसान अपने आप को पीछे से पीछे करता जाता है। अब जब वहाँ गए तो उस जगह का जो हुक्मरान था ना वो बड़ा नेक था, उस तक खबर गई। मक्का वालों को तो ऐसे लगा ना कि हमारे कैदी छूट के चले गए। उन्होंने पीछे से एक पूरा वफद बनाकर भेजा, खूब कीमती तोहफे तहाय, और अबू सुफियान थे उस वक़्त कुफर पे थे, अभी इस्लाम नहीं आया था, तो उसको लीड कर रहे थे। इन्होंने जाकर निजाशी को जाकर खूब अच्छी बातें और मिली जुली बातें सुनाई। इस वक्त उसकी डिटेल नहीं है, आप सब ने सुनी हुई है, मेरा ईमान है आप सबको पता, नहीं पता तो बाद में मुझसे आके पूछ लीजिएगा। अब हुआ क्या कि उन्होंने जाकर नबी सल्लम के इन साथियों को एक किस्म के मफरूर मुजरिम करार दिया और कहा कि ये हमारे लोग हैं, हमें इनको वापस कीजिए। असहमा बहुत समझदार और जीरक शख्स था, उसने कहा मैं कैसे भेज दूँ, पहले मैं उनसे पूछूँ तो सही वो क्या कहते हैं। उसने अपने कारिंदों को भेजा कि जो मक्का से एक वफद आया हुआ है उनको लेकर, तकरीबन 83 ± लोग थे और कुछ औरतें भी थी उसमें। अब उधर से हज़रत जाफ़र तैयार, जो अल्लाह के नबी सल्लम के चचेरे भाई थे, चचा के बेटे भी थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई भी थे, और ज़रा से इनकी चंद बातें नोट कीजिएगा। कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनू हाशिम से थे, शक्ल व सूरत में नबी सल्लम से बहुत ज़्यादा मिलते थे। ही रिजेंबल टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम, और कौन नबी सल्लम से मिलता जुलता था? मुसअब बिन उमैर। इनकी इस मुशाबहत की वजह से अल्लाह के नबी इनको क्या कहा करते थे, लिख लीजिए आपको शायद फ़ायदा हो, अशबख्ता खल्की व खुलुकी। क्या मुकाम है हज़रत जाफ़र का। अल्लाह के नबी कहते थे कि आप शक्लो सूरत में भी और अखलाक और आदात में मेरे मुशाबे हैं, हुसन और खुल्क दोनों मिल गया। हज़रत जाफ़र नबी सल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे, जो मुतवल्ली काबा भी थे और बनू हाशिम के सरदार भी थे। जब आपकी उम्र मुबारक 8 बरस की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। तब दादा की वसीयत के मुताबिक आप अबू तालिब की किफ़ालत में आए थे, कौन? नबी सल्लम। अब अबू तालिब के 4 बेटे थे, अकील, जाफ़र, अली और तालिब। तालिब के नाम पे तो अबू तालिब थे। जब नबी सल्लम کو اللہ نے نبوت سے فائز کیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی. جب یہ ذرا سے بڑے ہوئے اس دور کے رواج کے مطابق ان کی شادی ہو گئی اسمہ بنت امیس سے. آپ نے شاید کبھی ان کا نام سنا ہو. آپ کو تک اس عورت کی کیا خوبی ہے؟ جعفر کی بیوی بنتی ہیں ابھی شروع عمر میں. ابھی ہم سنیں کہ حضرت جعفر بڑی جوانی میں فوت ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. تو اسمہ کی شادی اس کے بعد ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی. اور جب سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پہ یہ لوگ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ذو الخلیفہ, جو آج بھی ہے میقات ہے, بالکل وہاں ان کے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تھی. اور 2 سال آپ کے بعد ابو بکر صدیق زندہ رہنے کے جب دنیا سے گئے تو پھر اسمہ بنت امیس کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہوئی. ذرا سوچیے اسمہ کہاں سے کہاں آ گئیں. بھاوچ, پہلے جعفر کی بیوی تھی تو بعد میں حضرت علی کی بنی. ہمارے کلچر میں تو یہ باتیں ایسی ہا ہو ہے, ایسے بڑے بڑے صحابہ کی بیوی بننے کا اللہ نے اعزاز دیا اسمہ بنت امیس کو. اسی میں کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, فوراً دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے. سابقین الاولین میں سے تھے, بھلائی میں بھی سبقت کرتے تھے, ابتدائی دور کے مسلمان تھے. وہ ساری مظلومیت اور بے بسی اور بے چارگی کا زمانہ انہوں نے گزارا جو ارلی مسلمس نے گزارا. انتہائی تکالیف سے گزرے جعفر اور ان کی بیوی, آزمائشوں کا دور شروع ہوا, ایزا رسانیاں تھیں. نبوت کے 5ویں سال اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ ظلم سے بچتے ہوئے ملک حبشہ چلے جاؤ. میں نے سنا ہے کہ وہاں کا حکمران اچھا ہے. جو لشکر گیا اس میں حضرت جعفر اور اسمہ بنت امیس بھی تھیں. گئے تھے خفیہ طور پہ, لیکن جب حبشہ پہنچ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہاں جا چکے ہیں. وہاں پھر نجاشی نام کے بادشاہ کے دربار میں جب ان کا سارا معاملہ ہوا جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سیرہ کی, تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جس شخص کو ریپریزنٹیٹو بنا کر, کوآرڈینیٹر بنا کر پیش کیا گیا, وہ حضرت جعفر تیار تھے. پہلے تو ان کا نام جعفر بن ابی طالب تھا, لیکن بعد میں کیسے تیار بنے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے. انہوں نے اس وقت بڑے محبت اور بڑی جرت کے ساتھ سورۃ مریم کی آیتیں پڑھی, کیونکہ نجاشی کرسچین تھا اور اس وقت کے نصارہ کے عقائد بدل چکے تھے. بہت خطرہ تھا کہ وہ اپنے ہی عقائد اور نظریات کے خلاف بات سن کر ان کو تکلیف دیتا. پہلے تو مکہ والوں نے جو تحفے تحائف اور بہت چیزیں دیں اس کا اثر ہو سکتا تھا, اوپر سے اس پہ غصہ ہو سکتا تھا, لیکن اتنے خوبصورت طریقے سے, مدلل طریقے سے بات کی, اور وہ کوسچن آنسر تھے, کہ اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ اس بات میں اور جو عیسیٰ پہ پیغام آیا تھا اس میں کوئی بھی مشکل نہیں. میں چاہوں گی کہ یہاں آپ کو جعفر کی زیادہ باتیں سنانے کے بجائے تھوڑا سا ٹکڑا تو سناؤں کہ انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے سامنے بات کیا کی تھی. ہمیں 4 لوگوں کے سامنے بات کرنی نہیں آتی, گھبرانے لگ جاتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں, ایوہ الملک کن قوماً اہل جاہلیہ نعبد الاصنام و نات الفواحش و ناکل المیتا و نقطع الارحام و نسی الجوار و یاکل القوی من ضعیف فکن علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ فدعنا الی اللہ لنوحدہ و نعبدہ و نخلا ما کن نعبد نخن و آباؤنا من دونی. وقت کی طوالت کا ڈر ہے اس لیے آپ کو برا نہیں سنا رہی, ذرا سا اردو میں سنیے. ٹو دی پوائنٹ اور بالکل سچ بات کی. کہتے ہیں کہ اے بادشاہ, ہم جاہل تھے, ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, بدکاری کیا کرتے تھے, ہم مردار کھاتے تھے, پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. یعنی پچھلا دور جو نبی کی آمد سے پہلے کا تھا اس کا ایک بڑا ہولناک قسم کا منظر پیش کیا. ہم اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر ہماری جانب مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب, جس کی نجابت و شرافت, امانت و دیانت اور اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے. اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس کے سوا جن بتوں کی اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے اس سے باز رہنے کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں راس بازی، امانت داری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا۔ خون ریزی، بے حیائی، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے اور پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانے سے ہمیں منع کیا، بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان قبول کیا، جس پر ہماری قوم ہمیں تکلیف دینے کے در پہ آ گئی، ہمیں ستایا، پریشان کیا، ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جب ان کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا تو اے بادشاہ، ہم نے وطن عزیز کو خیر باد کہا اور پناہ کی تلاش میں ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہ امید لیے ہوئے کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحرا نشین بدو کسی جگہ پڑھنے نہ گیا ہوا شخص بول رہا، جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں نہیں پڑھا، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جو آج سے پہلے کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں کھڑا ہوا جہاں کا ٹانگیں کانپتی ہیں، شاہی درباروں کے آداب سے یکسر نہ واقف، کوئی سفیر بھی نہیں ہے کہ سفارت خانے میں جانے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی ہو، سفارتی آداب بتائے جائیں، لیکن صرف ایک سوال کے جواب میں بادشاہ کے کتنی جامع، پر مغز، مدلل، اثر انگیز گفتگو کی۔ کیوں؟ یہ معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، یہ فیضان تھا۔ ہر صحابی ایسی خوبصورت بات کرتا تھا، اس کی بات دل میں اترتی تھی، اور آج بھی جیسا استاد ہوتا ہے نا ویسے شاگرد بن جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ اتنا اثر ہوا نجاشی کے دل پر جعفر کی اس بات کا کہ مبہوت ہو گیا، کہنے لگا کچھ کلام تو سناؤ، تمہارا صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں گھبرا گیا، کیونکہ سورت مریم ان کو ترجمہ آتا تھا نا، اب کیا سناؤں؟ کہا سورت مریم سناتا ہوں، حالانکہ اس میں ڈائریکٹ چوٹ تھی اس وقت کے کرسچینٹی کے افکار پہ، لیکن کہتے میں نے کہا میں تو حق ہی کہوں گا، ڈاکٹر اچھا وہی ہوتا ہے نا جو وہ گولی دے جس سے علاج ہونا ہے۔ انہوں نے سورت مریم کی تلاوت کی، اور آج میں بھی اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کسی کرسچین سے بات ہو، اور میں خود بھی ایون جہازوں میں اور ایئرپورٹس پہ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ کرسچینٹی کے کس سیکٹ سے ہے تو میں موسٹلی سورت مریم کا ترجمہ کہتی ہوں کھول کے پڑھیے۔ اور نجاشی زارو کتار رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے رخساروں پہ بہنے لگا، کہنے لگا ان نہاذا والذی جا بہ عیسیٰ لیخرج من مشکات واحد، کہتے ہیں کہ بے شک یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ آج میں نے پھر ریسرچ کی کہ نجاشی صحابی تھا کہ نہیں، آپ کو تو یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھوایا۔ تو آج کی شخصیت میں آپ نجاشی کو بھی نوٹ کریں، کچھ لوگ دور رہ کے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ کا حال یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، قریب رہتے ہوئے بھی بے فیض رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے مکہ سے آئے ہوئے سارے گروہ کو واپس بھیجا، ان کے تحفے تحائف واپس کیے، کہا مجھے تمہاری رشوت نہیں چاہیے، اور خبردار اگر کسی نے ان کو کچھ بھی کہا۔ وہ سارے شرمندہ ہو کے وہاں چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں رہنے لگے۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کے نتیجے میں اللہ کے نبی اور دوسرے لوگ مدینہ منتقل ہوئے، تب یہ مہاجر آہستہ آہستہ وہاں آنے لگے۔ بیچ میں ایک دفعہ جا کے واپس بھی آئے تھے، وہ ایک اور واقعہ ہے۔ کسی نے حبشہ میں قیام کے دوران خبر اڑا دی تھی کہ مشرکین مکہ تو مسلمان ہو گئے، اور وہ سورت نجم کی ایک آیت پہ سجدہ کرنے کی ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو بہرحال جب لوگ واپس گئے تو پھر ان پہ خوب ظلم و ستم ہوا تھا، لیکن جب دوبارہ آئے تو حضرت عثمان اور ان کی بیوی جو نبی کی بیٹی تھی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حبشہ سے پھر مکہ واپس آئے تھے، لیکن جب خبر غلط ہوئی تو پھر بہرحال بہت تکلیفیں ہوئیں۔ تو بات یہ ہے کہ دور بیٹھا نجاشی سمجھ گیا اور حضرت جعفر کو اللہ نے کس طرح موقع دیا، کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہاں ان آیات میں جس لشکر یا جس گروہ کا قصہ ہے یہ وہ نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو بہت جوڑ دیتے ہیں اس سے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ جب خود اسلام سے قریب ہو گیا تو اس نے پھر کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 70 تھے یا 40 تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ آئے کہ ہم دین سیکھیں۔ ادھر پھر جب ان کے سامنے قرآن ہے تو وہ اذا سمیعوا میں اس کی بات ہے۔ تھوڑا سا آیتوں کے ٹیکسٹ پہ غور کر کے دیکھیے، انہوں نے حق کو پہچانا، اور اللہ کہتے ہیں جو میں آپ کو جملہ دینا چاہتی ہوں نا وہ لے لیجئے، कि यकूलूना की बात है, यकूलूना उन्होंने कहा, क्या कहा कि हम ईमान ले आए उस पर जो अल्लाह ने दिया और हमें भी गवाहों में लिख ले। और साथ ही अल्लाह ने जो बात आयत 85 में कह दी, फअसाबकुमुल्लाहु बीमा कालू, इसको हाईलाइट कीजिए, ये सारी बात इस पे हो रही है। हम तो आज तक ये कहते हैं कि जन्नत अमल से मिलेगी, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। उलमा कहते हैं कि यहाँ अमल तो है ही कोई नहीं, फअसाबकुम जन्नत की बात किस पर होगी, कौल पे, समझ आइए बात, इनके इस कौल के ऊपर इनको जन्नत क्यों दी, अभी इन्होंने एक्शन तो कोई किया नहीं। तो उसकी वजह यह है कि ये कौल सिर्फ कौल नहीं था, ये कहने वाले के दिल की कैफियत को बता रहा है। वो कौल इनकी पूरी हस्ती का नुमाइंदा था, वो इनकी शख्सियत के फटने की आवाज़ थी। उन्होंने अल्लाह के कलाम को इस तरह सुना कि उसके अंदर जो हक था वो उसको पा गए और आतिशफिशां की तरह फट पड़ी उनकी ज़ुबान और उनकी आंखें, उनके दिल दिमाग में एक इनकलाब आ गया, उनकी सोचों का महवर बदल गया, उनका किबला बदल गया, सारे तअस्सुबात और मसलियत की दीवारों को गिरा दिया उन्होंने। वो भी कह सकते थे कि हम ईसाई हैं, हम ज़रा सोच के आएंगे। और उन्होंने हक के साथ अपने आप को इस तरह शामिल किया कि इनकी कोई अलग हस्ती ही बाकी ना रही। तो जो मार्फते हक होती है ना, इसके बाद आप और हक अलग नहीं रहते, आप चलते फिरते अल्लाह के वजूद के गवाह बन जाते हैं, आप शुहदा अल नास बन जाते हैं, आप वो बन जाते हैं जिनको देख कर अल्लाह याद आता है, आपकी ज़िंदगी का मकसद दीन की सरफराजी बन जाता है, आप वो बन जाते हैं कि जिनको देख कर लोग कह सकते हैं कि जन्नतियों को देख लो। जिसको एक दफ़ा अल्लाह का पता चल जाए वो इसको छोड़ दे। देखिए, किसी को UNO में जॉब मिल जाए, बहुत बड़ी कंपनी है ना, बहुत बड़ा इदारा है यूनाइटेड नेशन, क्या उसको छोड़ कर आपके मुल्क के किसी छोटे मोटे ऑफिस में काम करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। चलो UNO में नहीं मिलती, अमेज़ॉन में किसी को जॉब मिल जाए, किसी और बड़े से बड़े इदारे में मिल जाए, उसके बाद तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। तो लिखिए, जिसको अल्लाह के इदारे में जॉब मिल जाए, जिसको अल्लाह का काम करने का मौका मिल जाए, जो अंसारुल्लाह बन जाए, जिसको अल्लाह के दीन की प्रमोशन का मौका मिल जाए, क्या वो उसको छोड़कर 5, 10, 15, 20 डॉलर पर आवर की जॉब करेगा? और जो 15-20 डॉलर लेकर जॉब करेगा ना, वो भी दीन का काम करेगा, लेकिन वो मिम्मा रफू मिनल हक नहीं, मिम्मा रफू मिनल डॉलर होगा। कितने मिलते हैं, क्या मिलता है, कैसे देते हैं, क्या देते हैं? अल्लाह के बंदो, अगर ऐसे कीमती लोगों को कुछ दिया जाए तो कंगाल हो जाओ, बैंक के बैंक करप्ट हो जाए। अगर अल्लाह के रास्ते में दौड़ धूप और भाग दौड़ करने वालों को पे बैक किया जाए, दिल भी चाहे दे भी दो, कोई पॉकेट मनी भी दे दो, तो वो उनकी किसी एक रात की मेहनत का बदला नहीं है। किसी को अगर कोई दे भी देगा तो वो सिर्फ उसके एक्सपेंसेस, उसकी यूटिलिटीज़ का बदला होगा, चाहे कोई लाखों डॉलर दे दे। तो याद रखिए, कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो आपको अल्लाह के रास्ते के कामों के ऊपर कुछ पे कर सके, क्योंकि मिम्मा रफू मिनल हक। हर वक्त बंदा लरसता ही रहता है, कांपता ही रहता है, अल्लाह मुझसे ना छीनना, अल्लाहुम्मा ला तस्तब्दिलना व तस्तहदिमना, अल्लाह मुझे ना बदलना, मेरी जगह कोई और ना आ जाए और मुझसे ये खिदमत लेते रहें। ये रोज़ सोच के बैठती हूँ इधर, अल्लाह का दीन बताने वाले कोई थोड़े हैं दुनिया में, कोई थोड़े आलिम है, कोई थोड़े मुफ्ती हैं, कोई थोड़े इल्म के पहाड़ है, कोई थोड़े अच्छी बात करने वाले हैं, नहीं, अल्लाह मुझे ना छोड़ना, उनको जो मर्ज़ी उनसे ले ले मेरी वला से, बस मेरा काम ना छीनना। ये नीयत करके जब आप बैठते हैं ना, बस अल्लाह आपको इसी पे पकड़ता है। और ये रब्बानी तजुर्बा होता है, हर पारे के बाद बंदा अपने नसीब पे फ़ख्र करता है। मैं बैठी हूँ, आप भी अपने ऊपर फ़ख्र किया करें। फ़ख्र को मैं ब्लेसिंग कहती हूँ, फील ब्लेस्ड, हमें कोई फ़ख्र नहीं, लेकिन अल्लाह मैं करी हूँ, जो जितनी कुर्बानियाँ दे के आता है ना उनको मिलता है। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। हर साल कुछ लोग कुछ छोड़ के आते हैं, कोई जॉब छोड़ के आता है, कोई कुछ छोड़ता आता है, और जो खुद अपना पढ़ाना छोड़ के आते हैं, हमारे पास ऐसे सैकड़ों साथी हैं, खुद भी पढ़ा रहे होते हैं, कहते नहीं हम दारा कुरान आपके साथ सुनेंगे, फिर जो अल्लाह उनसे लेता है, ये है असल में हक। मुझे दीन का काम करना है, मेरी ज़ात, मेरा नाम, मेरा काम, ये तो कुछ भी नहीं। तो क्या पता चला, अंदर एक जलजला आया जिसने उनके वजूद को हिला के रख दिया, हद तक इनकी आंखें आंसुओं से बह पड़ी। आज दुआ करें कि मार्फत हक भी हो जाए और जाफर की तरह हक गोई की जरूरत भी मिल जाए। یہ کچھ زبان کا مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑا ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا. یہ 125,000 کا پڑا ہوا کلمہ بھی نہیں تھا جو راہداری میں پڑھتے ہیں لوگ میت کے ارد گرد بیٹھ کے. یہ وہ کلمہ تھا جس کے بعد ایک انسان کی ہستی اپنی نہیں رہتی. اور یہ وہ عمل والا, یہ زبان نے قال کا نہیں, یہ جملہ ضرور نوٹ کیجئے گا, زبان نے قال سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, زبان نے حال سے پڑھا. یہ جملہ لکھ لیں. قول سے تو ہم بھی 125,000 پڑھتے ہیں, 500 دانے کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ لا, اور پورا بھی نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور بچے کو کیا سکھاتے ہیں لا الہ لا الہ لا الہ, اعوذ باللہ. کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے بچے کو, دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ, کیونکہ آگے اللہ ہی نہیں ہے. یہ کلمہ اس کی شروط آتی ہیں آپ کو, کتنی ہے پتہ ہے آپ کو, کیا ہے پتہ ہے آپ کو. میں نے جہاں یہ سوال کیا خاموشی ہوتی ہے, گمبھیر سناٹا. جب میں نے فرسٹ ٹائم آج سے 5-6 سال پہلے غالباً یورپ میں کہاں تھی وہاں سوال کیا, اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم پاکستانیوں کو لا الہ الا اللہ کی وہ 9 سے لے کے 14 شروط بھی نہیں پتہ, کنڈیشنز بھی نہیں پتہ جس کے بغیر کلمہ قبول نہیں. اس کے بعد میں کئی دفعہ پڑھا چکی ہوں اور اسے اگلے دورہ قرآن میں بھی ڈال دی تھی, پتہ نہیں وہ کون سے سال کا تھا. آج جا کر پڑھیے گا, پوچھیے گا, ڈھونڈیے گا. اللہ اکبر کبیرہ, ہمارا کلمہ گونگا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے, میری اس کڑواہٹ کو برداشت کیجئے. پھیکی چائے ہے یہ, کڑوی کنین کی طرح کی کافی پیتے ہیں ہم. یہ کوئی ویٹ لاس والا پروجیکٹ تو ہو سکتا ہے, یہ گناہوں کو لاس نہیں کرتا. کلمہ ہی نہیں صحیح ہے, اسی لیے یہ ملک کا حال ہے. لا الہ الا اللہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. آج پاکستانیوں میں سے 9 کروڑ یا کتنے ہو چکے, ان لوگوں نے ایک بار بھی وہ کلمہ پڑھا ہوتا نا جو نجاشی نے پڑھ لیا تھا, اور ایک دفعہ اس طرح حق کو بیان کر دیا ہوتا جیسے جعفر طیار نے کیا تھا, تو اس وقت ان کی زندگیاں بدل ہوتی. اب کس ملک میں گھن برستا, اس کی زمین میں آج بھی بڑے سونے اور ڈائمنڈ کی کانز ہیں, میں کچھ دیکھ بھی چکی ہوں. نمک کی کانیں تو پوری دنیا سے سب سے اچھی آپ کے کھیوڑا میں ہیں. اس ملک میں ڈائمنڈ ہے, نکلے گا کس دن, یہ لکھ کے رکھ رہے ہم نہیں ہوں گے, میرا نہیں خیال کہ ہم ہوں گے تب, یہ نکلنا ہے. اور یہ ملک دنیا کی سپر پاور بننا ہے, یہ لکھ کے رکھیے, احادیث سے یہ باتیں ملتی ہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مدینہ منورہ کے بعد اگر دوسرا کوئی بڑا ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان, پاک میں نے طیبہ طیب اور استان شہر مدینہ, پاکستان کا عربی ترجمہ کر دیجئے مدینہ طیبہ ہے. احادیث میں یہ غزوہ ہند کدھر ہونی ہے قیامت سے پہلے, یہ آپ کے ارد گرد ہونی ہے. اور ہم اس پاکستان کا جو حال کر بیٹھے ہیں, اللہ ہی بھیجے گا کچھ لوگوں کو تو یہ صاف ستھرا ہوگا, اور ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اب داڑھیوں والے جوان زیادہ ہیں, بوڑھوں باپوں سے زیادہ آج کی یوتھ میں ایمان آنے لگا ہے. تو یاد رکھیے, اس ملک کو اپنے کلمہ پڑھانا ہے یا خود اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود کو بڑھانا ہے, مما رفو من الحق, جرت پیدا کیجئے. آج کے مسلمان حکمرانوں کو بالکل جرت چاہیے جیسی جعفر طیار کی جرت تھی. اور آپ سوچیں نا, جعفر طیار از ایکول ٹو آج کا مسلمان, اور نجاشی جو ایک بڑی پاور ہے تو یو این او. آج سے کچھ سال پہلے آپ کے وزیر اعظم نے بھی یو این او میں اسلام کی بات کی تھی نا, کتنی عزت ملی ان کو. آج تک کسی نے ان کے اوپر کوئی الزام لگایا کہ یہ باتیں کیوں کر کے آئے, لیکن آپ کو تو اس کے بعد اسلام کی عزت ہو گئی تھی ویسٹ میں. ہم وہاں رہنے والے آپ کو گواہی دے سکتے ہیں, جو انہوں نے عورت کی بات کی اور اسلام کی بات کی اور 3 پوائنٹس تھے غالباً, اس کے بعد گوروں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے جعفر چاہیے, سمجھوتے کیے بغیر. اللہ مالک ہے, دیتا ہے تو دے, نہیں دیتا تو نہ سہی, ہم نے نہیں غیروں سے لے, نہیں رکھو اپنا کاسا اپنے پاس. آج کر کے دیکھیے, آپ کا زمین کا سونا پاکستان کا باہر آ جائے گا. یہ ڈائمنڈ کی کانیں ایسے باہر آئیں گی کہ جیسے وہ پتھر اور روڑے نکلتے ہیں سیلاب کی زمین میں سے. یہ ہم نے پھینکا ہوا ہے 70 سال نہیں, آپ 170 سال تک تڑپ لیں. جس دن اس ملک کی توحید پختہ ہو گئی, جس دن ادھر معرفت حق ہو گئی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. تو آج ضرور سوچئے گا اس پہ, اتنا وقت جو لگا ہے نا یہ ضائع نہ جائے. حق کو پہچان لیے, اب حق کا اظہار کیجئے, پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے پھیلا. حضرت جعفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی جعفر بن ابی طالب تو تھے. یہ جعفر طیار کیسے بن گئے یہیں سن لیں, تاکہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو یہی سبق دیں, जो उस दौर की माएँ दिया करती थी कि बेटा मैदान जंग से तेरी शहादत की जब खबर आए तो मुझे ये न देखना पड़े कि गोली तेरी बैक पे लगी है, नहीं तो भाग रहा था, गोली तेरे सीने पे लगी है, सीना दिखा कर दिखाओ, पीठ फेरने वाले ना बनो। हज़रत जाफ़र जो थे जब मुसलमान हुए और फ़तेह खैबर के बाद कुछ लोग जो खैबर से वापस आए थे तो वहाँ बहुत बड़े मुश्किल हालात हो गए थे। मुसलमानों को फतह तो बहुत मिली थी और साथी भी बड़े खुश थे। ये वो दौर था कि जाफ़र वो उस दौर के गए हुए हबशा में वापस मदीना आए। आपको था कि नबी सल्लम को हज़रत जाफ़र कितने साल बाद मिले? आपको समझाया ना, 5 नबी में गए थे, जब नजाशी के सामने बातचीत की, फिर हबशा के ही हो गए। उसके बाद मौका ना मिला, मुसलमानों के हालात बिगड़ते गए, दिगड़दू होती गई हालात, लेकिन जब खैबर फतह होता है सन 7 हिजरी में तो अब तो मुसलमानों की बड़ी बरकत थी, क्योंकि अगले ही साल तो उस मक्का भी फतह हो रहा है। तो हज़रत जाफ़र ने फिर उस साल हबशा से मदीना आने का फ़ैसला किया। अल्लाह के नबी को जब हज़रत जाफ़र के मदीना आने की खबर मिली, आप खुशी से झूम उठे, खुद हज़रत जाफ़र के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, और आप बार बार क्या कह रहे थे? मा अदरी बी अय्युहिमा अना अशद्दु फरहन, कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि मैं ज़्यादा खुश किस बात से हूँ, अब बी कुदूमी जाफ़र अम बी फतह खैबर, कहते हैं मुझे नहीं पता कि आज मैं जाफ़र के आने पे इतना खुश हूँ या फतह खैबर की वजह से। चचेरे भाई भी थे, कज़न थे, मोहब्बत थी आपको। अल्लाह के नबी के दिल में अल्लाह ने हज़रत जाफ़र के लिए बड़ी मोहब्बत और कुर्बत डाली भी थी, और आपके ये अल्फाज ही बता रहे हैं। और जब ये मक्का से निकलते हैं 5 नबी में और मदीना में आत खैबर फतह होता है, तो उस वक़्त 16 साल की, जब तकरीबन 15 साल की जुदाई के बाद ये मुलाकात हुई, और अल्लाह के नबी बहुत खुश थे। अल्लाह के नबी तो खुश थे। अब मैं आपको जो अगला एंगल बताने लगी हूँ वो बड़ा काबिल तकलीद है। मदीना के फ़ुकरा और मसाकीन जब उनको पता चला कि जाफ़र आ रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सबको पता था वो सखी थे, फैयाज थे, मेहमान नवाज थे। ही वॉज़ अ जनरस मैन, कहते हैं कि इससे ज़्यादा मेहरबान मोहताजों और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला कोई नहीं देखा। दरिया दिल थे, दरिया जितना बड़ा दिल था, इसलिए इनको अबुल मसाकीन कहते थे। आपको पता है उम्मुल मसाकीन भी एक साबिया का नाम है, नबी की जौजा, लंबे हाथों वाली। तो मर्दों में अबुल मसाकीन यानी गरीब परवर थे। हज़रत अबू हुरैरा इनके बारे में कहते हैं, काना अख़यरुन्नास लिल मिस्कीन जाफ़र इब्ने अबी तालिब, कहते हैं कि मिस्कीनों के लिए तो अबू तालिब सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान साबित हुए। वो हमें अपने घर ले जाते थे। सुनिए, अबू हुरैरा कौन है? होस्टलेंट, इल्म के लिए अपने घर से बेघर हुए हैं, असाबे सुफा में थे। पीछे भी सुनाया था ना आपको इनका किस्सा। कहते हैं कि हज़रत जाफ़र हमें अपने घर ले जाते और जो खाना मुयस्सर होता वो हमें खिला देते, यहाँ तक कि जब खाना ख़त्म हो जाता, क्योंकि उनके पास हमारे जितने खाने नहीं थे, जब खाना ख़त्म हो जाता तो वो चमड़े की खाली थैली लाकर हमारे हवाले कर देते जिसमें घी रखा जाता था। हम इस थैली को फाड़ कर इसकी दीवारों में लगा हुआ घी भी चाट लिया करते थे। यह इल्म का काम भरे पेटों से नहीं होता, इसके लिए इंसानों को भूख सहनी चाहिए। तो अबू हुरैरा ख़ुद गवाही देते हैं कि जाफ़र हमारी बहुत मदद करते थे। और आपने ये तो वो वाक़ियात थे, तो हज़रत जाफ़र की वजह से मदीना की बहारें लौट आई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन ना रही। अब आगे बड़ा सैड टॉपिक है। हज़रत जाफ़र मदीना में आए 7 हिजरी में, अगले ही साल 8 हिजरी में बिल्कुल उसके मिड में ग़ज़वा मूता हुआ। उसकी डिटेल्स आपको कुछ पीछे भी सुनाई थी, सुलह हुदैबिया के बाद के दौर में ये हुआ। उस जंग में हज़रत जाफ़र शहीद हो गए थे। इनका एक बाजू पहले कटा, लेकिन ये दूसरे हाथ में तलवार लेकर लड़ते रहे, और जब दूसरा भी हाथ इनका कट गया, दोनों बाजुओं से महरूम थे, और बिलाखिर दुश्मनों ने फिर इनको पाँव और रस्सियों से बांधा, जकड़ा और इनको कत्ल कर दिया। किन के ख़िलाफ़ हुआ था इस डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी को जब खबर मिली, आप इंतहाई रंजीदा दुखी, क्योंकि एक बेकसूर और एक नहत्ता शख्स मारा गया, और कासिद बनाकर भेजे गए थे यानी एम्बेसडर थे, जिसका कत्ल जायज़ नहीं था उस दौर में भी। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब ये सब देखा और रोमन्स की तरफ से ये सारी कहानियाँ हुई, तो आप हज़रत जाफ़र के घर गए। आपकी जौजा असमा बिनते उमैस थी, वो उस वक़्त तैयारी कर रही थी कि मेरे शौहर वापस आने वाले हैं। वो ख़ुद कहती हैं कि मैं घर को साफ़ सुथरा कर रही थी, सजा रही थी कि अब मेरे शौहर वापस आने वाले हैं। इतने में कहती हैं कि अल्लाह के नबी को देखा जो बड़े अनयूजुअल टाइम पे आए और आपके चेहरे पे उदासी थी। एकदम कहती हैं कि मैं घबरा गई कि अल्लाह के नबी इस वक्त क्यों आए हैं, पूछूं? फिर कहती मैं नहीं पूछ रही क्योंकि कोई ऐसी बात ना बता दें जो मैं बर्दाश्त ना करूं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देख कर उनके बच्चे जो थे ना, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा चचा कहते हुए आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने बच्चों से मोहब्बत का इजहार किया, प्यार किया। कहती क्योंकि हम सब मुतवक्के थे कि सारा ही लश्कर वापस आ रहा है, तो हर घर में ही तैयारियाँ थी, मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई सुथराई कर रही थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम से पूछने की जरूरत ना हो रही थी। आपने कहा कि बच्चों को मेरे पास लेके आओ। मैंने आवाज़ दी तो बच्चे भी आ गए, सब हंस रहे हैं, खुश हैं, मासूम बच्चे होते हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनको प्यार किया ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। और आप जब तक सब्र का पहाड़ बने हुए थे, अब उस सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और दर्द और गम जो आपने दिल में छुपाया हुआ था, वो तूफ़ान बाहर आ गया। कहने लगी मैं डर गई, मैं कांपने लगी। आखिर मैंने डरते डरते पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, बी अभी अंत व उम्मी मा युबकीक, अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या चीज़ आपको रुला रही है, आप क्यों रो रहे हैं? आ बलगा का अन जाफर व साहिब ही शैन, क्या आपको जाफ़र और उनके जो दो साथी थे जैद बिन हारिसा और अब्दुल्ला बिन रवाहा, उनके बारे में कोई ख़बर पहुँच गई है? तो आपने फरमाया नाम लकदस तुशिदो, हाँ वो सब शहीद हो चुके हैं। बस इतनी बात कहने की देर थी, आपने आंसू साफ किए और वहाँ से उठकर चले गए। ये वो शख्सियत थी, सिर्फ 41 साल 41 की एज में हज़रत जाफ़र शहीद हो गए। और सहाबा में से जिन्होंने इनकी शहादत का मंज़र देखा था, वो कह रहे थे कि हमने हज़रत जाफ़र को आखिरी वक्त तक इस्तकामत के साथ अपनी जगह पे खड़े देखा। और वही बात मैं फिर कहूँगी कि पहला बाजू तो कटा ही होगा, बेख्याली में तो जान नहीं प्यारी थी, दर्द नहीं हुआ उनको, फिर भी लड़ते रहे, दूसरे हाथ में झंडा पकड़ लिया। वो जो साहबी ने दांत निकाला था तो एक टूट गया तो दूसरा टूट गया, ये दूसरा कैसे टूटता है? ये मारफत हक़ के बाद टूटता है, मे मारफ मिनल हक़। बेहोशी लग जाती है, स्टरलाइज कर दी जाती है, चीज़ को दर्द ही नहीं होती। आप ज़ख़म के ऊपर कुछ टेंचर लगा दें तो ज़ख़म सुन्न हो जाता है ना। इन लोगों को दर्द नहीं होती थी क्योंकि इनके दिल में इस्लाम का दर्द था। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ग़ज़वे मुता के मौके पे जब हम इस्लामी लश्कर में मौजूद थे, तो शोहदा में हमने हज़रत जाफ़र को तलाश किया, वो इस कैफियत में मिले, क्या वजत नफ़ी जसदी ही बिदम व तेसीना मिन तानतिम व रमया, इनके जिस्म पर नेज़ों और तीरों के 90 से ज़्यादा ज़ख़म थे। पहला ज़ख़म तो समझ आता है, हमारे भी बेख्याली में हाथ पे छुरी लगी जाती है, फिर हम क्या कहते हैं, हाय मैं मर गई, पट्टी ये वो। सवाल कीजिए कि क्या बाकी 89 ज़ख़म हम सहते? मेम्मा रफू मिनल हक़ के बगैर ये नहीं सह जाते। राह हक़ की पहली कुर्बानियाँ बड़े शौक़ से देते हैं। जब ये काफ़िला चलता है, शुरू में कुछ लोग बड़े प्यार से जमा हो जाते हैं, एक एक करके किरनों किरनी झड़ने लगते हैं, एंड पे सिर्फ वो रह जाता है जो कि वाम ममा यनफो ना सुफ़ा यमकुस। ये इस्लाम की फितरत है, हकीकत ये है। और आपको तक अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा, जब इनकी शहादत हो गई, अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को ख्वाब दिखाया और आपने वो ख्वाब बयान भी किया। आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे दिखाया कि जाफ़र जन्नत में परों के ज़रिए उड़ रहे हैं। ये दो बाजू कटे थे ना, अल्लाह ने बाजुओं की जगह पर लगा दिए। राई तु जाफरन यतीर फिल जन्नति माल मलाइका, आप मैं नहीं ये बातें समझ सकते वल्लाही, अगर मारफत हक़ ही नहीं है तो। कुरान पढ़ने पढ़ाने से नहीं होती, मैं ये भी आपको बता दूँ, हम जो पाकिस्तानी लोग खाने खाते हैं ना, इससे कोई ताकत एनर्जी नहीं मिलती, सिर्फ इससे मोटापा और चर्बी मिलती है, और इल्ला माशाल्लाह जो गुजारा चल जाता है, हेल्दी खाने नहीं है हमारे। आप अपने ये बाजू कटवाएं तो आपको पर ना मिले, वो रब रब ही नहीं है। मैं नहीं कहती कि बाजू कटवा दें, हम तो पहले सारी इंश्योरेंसेस कराते हैं, सिक्योरिटीज़ करवाते हैं, फिर निकलते हैं। कहा अल्लाह ने जन्नत में इनको पर अता किए जहाँ वो फरिश्तों के साथ उड़ते फिरते हैं, इसलिए फिर इनको जाफर तैयार कहते हैं। आज भी अल्लाह के रास्ते के काम फरिश्तों के साथ उड़े बगैर होते कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। जब आप अल्लाह के लिए खालिस हो जाते हैं ना, तो अल्लाह आपसे आम लोगों से भी ज़्यादा काम लेता है और आपको उससे ज़्यादा एनर्जी भी देता है और आप दूसरों से ज़्यादा खुश भी होते हैं। अल्लाह आप सबको इस लज्जत से ज़रूर आशना करें। लोग थोड़ा करके भी थके होते हैं, आप ज़्यादा करके भी नहीं थकते। लोग एक बार नहीं कर सकते, अल्लाह आपसे बार बार वो काम कराता है। लोग एक साल नहीं वो नेकी कर पाते, अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी के आखिरी दम तक उस नेकी पे माइल करता है। तो आज यहाँ ये इतनी बातें कहकर ये कहूँगी कि अल्लाह आपको ये नसीब तो करे, देखा है जो मैंने औरों को भी दिखला दे। अल्लामा इकबाल कहा करते थे, अल्लाह मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मैं भी ये दुआ करती हूँ, अल्लाह इस कुरान को पढ़ाकर मैं चली ना जाऊँ, आप मेरे दिन ना गिने कि मैंने और कितने दिन रहना है। मैं आपको नूरे बसीरत आम करके जाऊँ, फिर मैं जहाँ मर्जी चली जाऊँ, अल्लाह आपका निगेबान होगा, अल्लाह आपका हारिस होगा। कुरान ऐसा पढ़िए जिसके बाद दिल से भी और आँखों से भी आंसू गिर जाए। फिर आप देखिए कि जो दुआएं हमने पढ़ी हैं, अगर इसको सामने रखते हुए हबशा के जिस गिरोह के सामने पढ़ा गया था, वो नसरानी थे, क्रिश्चियंस थे, उनके जो औसाफ दिख रहे हैं, नंबर एक तवाज़ो और इनकसारी वाले, रहम दिल, हक को कबूल करने वाले, हक को कबूल करने के बाद उसका इजहार करने वाले और अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह हमें भी ये अता कर दे। और इस आयत पे गवाही है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की, तफसीर इब्ने जरीर अल तबरी में ये मौजूद है रिवायत कि ये आयतें निजाशी और इसके साथियों के बारे में नाजिल हुई थी। इतनी सारी बातें सुनने और कहने के बाद अब अमल के नुक्ते मैं और आप अपने लिए नोट करते हैं कि इस रुकू से आपको मुझे अल्लाह की रज़ा को पाने वाले क्या काम मिले। नंबर एक, अल्लाह के कलाम को सुनना। नियत कीजिए, अच्छी सी आवाज़ में कुरान सुनिए। मैं भी आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आप स्टडी व्यू से पढ़ते हैं तो और, लेकिन जो इमोशनल टच कुरान का है ना, अभी तक मेरी चॉइस नहीं बदली। जो लोग मेरी ज़बान से ये नाम सुनते हैं वो आज भी सुन लेंगे, इदरीस सबकर और अबू बकर शात्री। ये दो नाम, इदरीस सबकर और अबू बकर शात्री, आपको मैं ऐप दे दूंगी, उसमें सबकी तिलावत है। बस घर के काम करते हुए इनकी तिलावत सुने, और भी सुनने हैं तो बहुत सारे हैं लेकिन ये दो काफ़ी हैं। अच्छी आवाज़ में कुरान सुनिए, फिर हक को पहचानना है, आज तो दिल कर है ना, और अल्लाह का गवाह बनना है, अल्लाह के रास्तों के मुसाफिर बनना है, हिजरतें करनी है इंशाल्लाह। ये घर हमें नहीं बचा लेंगे, एक हिजरत तो करनी है, क्योंकि घर में हमारी कब्र कोई बनाने नहीं देगा, तो ये घर तो हमें छोड़ ही देंगे। ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह के रस्तों में निकल कर हमने लोगों को अल्लाह का पैगाम देना है, हक शनासी की सिफत से मुजयन होने की दुआ करनी है और नेक लोगों के गिरोह में शामिल होना है। वो कैसे होते हैं? दीन की खिदमत करने वालों में शामिल होने का तरीका, कुरान के लिए आ जाइए, बी दवन, ताकि कोई आपको बीट ना कर सके इंशाल्लाह।